ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हमारे पीछे दोहराए, हे भगवान काल, हमारे पीछे दोहराइए,
हे भगवान
जन्म काल से ही काम इच्छाओं के कारण मनुष्य की इंद्रियों के कार्य मन जीवन शरीर धर्म धैर्य बुद्धि लज्जा ऐश्वर्य बल स्मृति तथा सत्य निष्ठा समाप्त हो जाते हैं। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कामो हृदयवरम, भौतिकतावादी जीवन का अर्थ ही होता है कि मनुष्य काम इच्छा नामक भयंकर रोग से पीड़ित है। मुक्ति का अर्थ है काम इच्छा से मुक्त होना, क्योंकि ऐसी इच्छा के कारण ही मनुष्य को बारंबार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है। जब तक उसकी काम इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, तब तक वह उन्हें पूरी करने के लिए बारंबार जन्म लेता है। अतएव भौतिक इच्छाओं के कारण ही मनुष्य नाना प्रकार के कार्य करता है और विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करके कभी तुष्ट ना होने वाली इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। इसका एकमात्र उपचार है भक्ति में लग जाना, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने पर प्रारंभ होती है। अन्य अभिलाष शिता शून्यम, अन्य अभिलाषा का अर्थ है भौतिक इच्छा और शून्यम का अर्थ है से मुक्त। आध्यात्मिक जीवन जीव के कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और इच्छाएं भी आध्यात्मिक होती हैं, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर अहेतु कीर्तोई। भगवान की अनन्य भक्ति ही एकमात्र आध्यात्मिक इच्छा है, किंतु इस इच्छा को पूरा करने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना पड़ता है। इच्छा रहित का अर्थ है भौतिक इच्छाओं से मुक्ति। श्री रूप गोस्वामी ने इसे अन्य अभिलाष शिता शून्यम कहा है। जैसे ही मनुष्य में भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उसकी आध्यात्मिक पहचान समाप्त हो जाती है, तब जीवन का सारा साज सामान जिसमें मनुष्य की इंद्रियां शरीर धर्म धैर्य बुद्धि सम्मिलित है, मूल कृष्ण चेतना से विपत हो जाता है। भौतिक इच्छाओं के उदय होते ही मनुष्य अपने इंद्रियों का तथा बुद्धि का उपयोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुष्टि के लिए सही ढंग से नहीं कर पाता। मायावादी विचारक निर्विशेष ज्ञानहीन तथा मन रहित बनना चाहते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जीव को जीवत रहना ही पड़ता है, सदैव इच्छाओं आकांक्षाओं इत्यादि लिए हुए, किंतु इन्हें शुद्ध बनाना चाहिए, जिससे मनुष्य भौतिक कलमश के बिना आध्यात्मिक रूप से आकांक्षा कर सके। प्रत्येक जीव में ये प्रवृत्तियां रहती हैं, क्योंकि वह सजीव है, किंतु भौतिकता से कलुषित होने पर वह भौतिक विपत्ति के हाथों में चला जाता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। यदि मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहता है, तो उसे भगवान की भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रत्येन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। भक्ति का अर्थ है अपने समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगाना। जब आत्मा परमेश्वर की सेवा करता है, तो उसके दो अतिरिक्त प्रभाव होते हैं। एक तो वह समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है, और दूसरा यह कि भगवान की सेवा में लगने मात्र से ही उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं।
अनुवाद एक बार फिर से,
अनुवाद एक बार हमारे पीछे फिर से दोहराइए। हे भगवान जन्म काल से ही कामेच्छाओं के कारण मनुष्य की इंद्रियों के कार्य मन जीवन शरीर धर्म धैर्य बुद्धि लज्जा ऐश्वर्य बल स्मृति तथा सत्य निष्ठा समाप्त हो जाते हैं।
ओम ज्ञानमृगस्य ज्ञानञ्जना शलाक्या चक्रवर्तनेन इंद्रियाणि मना प्राण आत्मधर्म रतिर्मति श्रेष्ठेज स्मृति सत्यम यस्य न शान्ति जन्मना। तो ये श्लोक का उच्चारण कौन कर रहे हैं? प्रहलाद महाराज। और इस अध्याय का नाम क्या है? भक्त शिरोमणि प्रहलाद। तो प्रहलाद महाराज केवल भक्ति नहीं थे, परंतु शिरोमणि भक्त है, सबसे उत्तम कोटि के भक्त। और इन श्लोकों में प्रहलाद महाराज हमें बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं। इस सातवें स्कंद में आप प्रहलाद महाराज की शिक्षा पढ़ते हो, आप पढ़ते हो कि हिरण्यकश्यपु जो प्रहलाद के पिता थे, क्या थे? भक्त थे या असुर थे? असुर पर भक्त भी थे। आखिर जैसे आपके मंदिर के एंट्रेंस में जय विजय है नहीं, अच्छा संत नगर में है, तो जैसे मंदिरों में जय विजय के स्टैचू होते हैं, जय विजय थे भगवान के द्वार पर, और ब्रह्मा जी के पुत्र कुमार वैकुंठ धाम में प्रवेश कर गए थे, पहले छह द्वारों से गुजर गए थे, तो सातवें द्वार में वो द्वारपालों ने चौकीदारों ने रोक दिया। कुमारस को इतना आनंद आ रहा था भगवान के धाम में पहुंचकर कि जब उन्हें रोका गया बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि तुम यहां रहने के योग्य नहीं हो, और उन्होंने उन्हें श्राप दी। भक्त जो है श्राप से घबराता नहीं है। जैसे परीक्षित महाराज को एक श्रृंगी ब्राह्मण ने श्राप दी थी, परीक्षित महाराज ने स्वीकार कर लिया। वो जय विजय ने ये इच्छा प्रकट की, श्राप देना तो दीजिए पर एक बार हमें दीजिए कि हमारे जन्म में भगवान का स्मरण कर सके। और जब भगवान ने यह वर्तलाप सुना, भगवान आए देखने के लिए क्या बीत रहा है, तो कुमारा ने देख लिया कि ये इनका तो बड़ा गहरा संबंध है भगवान का अपने द्वारपालों से। तो उनकी इच्छा थी कि वो श्राप को वापस ले लें, तो भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा है तुम्हें श्राप दो, क्योंकि भगवान प्रकट होने वाले थे, वो चाहते थे अपने भक्त के साथ अपनी लीला करने के लिए। तो जय विजय वैसे तो उनका परिचय है कि वो असुर थे, पर गहराई से देखा जाए तो भगवान के भक्त है। तो प्रहलाद महाराज के पिता का नाम था हिरण्यकश्यपु, और प्रहलाद ने हिरण्यकश्यपु में बड़ी भारी शक्ति भी थी। जैसे जब उन्हें वर चाहिए था ब्रह्मा जी के द्वारा, तो पहाड़ों में जाकर उन्होंने इतनी गहरी तपस्या उठाई, अपने टोज पर पांव के अंगूठे पर खड़े रहे, हाथ आकाश की तरफ, और देवताओं के 100 वर्षों के लिए, हमारे पृथ्वी के 6 महीने देवताओं के 12 घंटे के बराबर हैं, उन्होंने एक बूंद जल कभी नहीं पिया। आप तो सामने एक दिन निर्जल रखते हो और कई भक्ति हर एकादशी को रखते हैं, पर उन्होंने निर्जल रखा क्या 1000 सालों से, इतनी शक्ति थी उनमें। तो प्रहलाद ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था जो माता के गर्भ में थे, और किसके द्वारा? नारद मुनि के द्वारा। वैसे प्रहलाद को महाजन कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में 12 महाजनों का वर्णन है, श्री मुनिनाथ शंभु कौमार कपिल मनु प्रहलाद जन को भीष्मो बोली भाई ऐसा कर। और प्रहलाद ने यह उपदेश किसे दिया? अपने मित्रों को दिया। पाठशाला में उनके मित्र कहते थे प्रहलाद आओ खेलो, और प्रहलाद उन्हें शिक्षा दे रहे थे। और प्रहलाद के उदाहरण से हम ये देखते हैं कि उन्हें अनेक कठिन स्थितियों का सामना करना पड़ा। आप जो प्रचार करते हो, भगवान की सेवा करते हो, तो कई बार अनेक परेशानियां भी सहनी पड़ती हैं। भारत में तो इतनी बुरी स्थिति नहीं है, पर विदेशों में, रशिया जैसे देश में भी इतना आसान नहीं है प्रचार करना। सरकार चर्च वाले विरोध करते हैं, चर्च वाले आके कहते हैं ये लोग पागल हैं, इनकी किताब मत खरीदो। कई लोग चर्च ने पिछले 2 साल पहले एडवर्टाइजमेंट भी टीवी में जा रहा था कि डोंट बाय भगवद गीता, बोला ज्यादा बिक्री उसके बाद। तो मैं उदाहरण दे रहा था कि कई स्थानों में आज के वातावरण में भी अनेक कठिन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो प्रहलाद भी प्रचार कर रहे थे और उनके पिता ये नहीं समझ पा रहे थे कि प्रहलाद की शक्ति कहां से आती है। पहाड़ों से फेंका, ढेरों सांपों ने घेरा, हाथी चले उन पर जब भी प्रहलाद की सुरक्षा रही। राखे कृष्ण मारे के माने के ना, जिसे कृष्ण मारना चाहे कोई बचा नहीं सकता, जिसे बचाना चाहे कोई मार नहीं सकता। तो एक दिन पिता ने पूछा कहां से आ रही है तुम्हारी ये शक्ति। प्रहलाद ने कहा वहां से जहां से आपको भी शक्ति प्राप्त हो रही है। फिर हिरण्यकश्यपू ने पूछा कहां है तुम्हारे भगवान। प्रहलाद ने कहा हर जगह, इस खंभे में, इस छत में। और फिर भगवान प्रकट हुए नरसिंहदेव भगवान के रूप में और ब्रह्मा जी के सारे बड़ों का पालन रखते हुए उन्होंने हिरण्यकश्यपू का वध किया। प्रभुपाद जी ने कहा एक समय इस विषय पर लेक्चर देते हुए कि भगवान ने हिरण्यकश्यपु के वध के पश्चात ब्रह्मा जी से कहा आगे से ऐसा वर मत देना, तुमने मेरा कार्य बहुत कठिन बना दिया था। प्रभुपाद ने कहा इस ब्रह्मा डोंट गिव सच बेनेडिक्शन इन फ्यूचर, यू मेड माय जॉब वेरी डिफिकल्ट। ये भगवान को सब वर्णों का पालन करते हुए उन्होंने उनका वध किया। तो भगवान बड़े क्रोधित थे क्योंकि आखिर हिरण्यकश्यपु की योजना क्या थी निर्दोष उनके भक्त प्रहलाद का वध करने के लिए। और फिर प्रहलाद ने जाके जब हार चढ़ाया तो वो ठंडे हो गए। तो भगवान ने प्रहलाद से पूछा प्रहलाद मेरे कारण तुम्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और पिछले अध्यायों में हमने प्रहलाद के भाव को भी पढ़ा। प्रहलाद ने कहा हे भगवान मुझे अपनी मुक्ति की चिंता नहीं है, मुझे उनकी चिंता है जो कि दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आज देखा जाए विज्ञान क्या कर रहा है, कष्टों को छुपाने का प्रयास करता है। एक बीमारी आती है उसको हल करते हैं, समझते हैं कि सब कुछ वश में आ गया, फिर एक नई बीमारी आ जाती है। जैसे आज को क्या इबोला अभी वो कहते हैं कि इबोला का भी इलाज हो जाएगा। तो ये है बौद्धिक संसार की स्थिति, वो प्रयास करते हैं दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने के लिए। तो प्रहलाद ने क्या भाव प्रकट किया। प्रहलाद ने कहा मुझे अपनी मुक्ति की चिंता नहीं, मैं पहाड़ों में नहीं जाना चाहता, जंगल में नहीं, मैं रहना चाहता हूं जहां भक्त हूं। कल आप भक्तों ने एक महान संत, क्या था उनका नाम, तिरुभाव दिवस मनाया। तो भगवती सिद्धांत जी का भी यही उपदेश था कि जंगल में नहीं पहाड़ों में नहीं, हमें रहना है जहां प्रचार कर सके। भगवती सिद्धांत जी ने अपने प्रचार शुरू से करने से पहले बड़ी गहरी तपस्या की थी। उन्हें मायापुर में जहां महाप्रभु के अंकल चाचा जी चंद्रशेखर की जमीन थी वहां एक कुटिया बनाई थी और कुटिया में बैठकर जप कर रहे थे। दिन में 3 लाख बार, एक दिन में जैसे हरिदास ठाकुर कितना जाप करते थे 3 लाख, और 3 लाख बार जाप समाप्त किए बिना ना कुछ खाते थे ना पीते थे। तो तो भारतीय सिंह सरस्वती ठाकुर रोज 3-8 बार जाप कर रहे थे और ऐसे उन्होंने जाप किया लगभग 10 सालों के लिए 1 बिलियन नेम्स की योजना उन्होंने बनाई थी और एक समय छत उनकी कुटिया की गिर गई थी बारिश के कारण तो उन्होंने हम होते तो हम पहले छत को रिपेयर करते उन्होंने बाएं हाथ से छाता खोला छाता के नीचे बैठे दाएं हाथ से जॉब करते गए और खाने के लिए क्या खाते थे चावल गंगा जल में उबला बस तो इस प्रकार की खुराक उन्होंने रखी 10 साल के लिए फिर भगवान ने उन्हें कहा हे भक्ति सिद्धांता तुम्हारा असली उद्देश्य है प्रचार करना फिर वो माया को छोड़कर उन्होंने प्रचार का कार्य शुरू किया तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मुझे अपनी मुक्ति की चिंता नहीं मुझे उन बद्धियों की चिंता है जो कि दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो भगवान ने कहा है प्रहलाद मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा मांगो मेरे से क्या वर चाहिए आखिर पर भगवान के कारण क्योंकि प्रहलाद का क्या था दोष प्रहलाद का एक ही दोष था क्या क्या था दोष कि विष्णु के प्रति उनका बड़ा गहरा आकर्षण था जो कि हिरण्यकश्यप के शत्रु थे क्योंकि उनका भाई का वध हुआ था उनके द्वारा तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा मांगो मेरे से क्या वर चाहिए आखिर भगवान के लिए कोई कार्य असंभव है कोई कार्य असंभव नहीं प्रहलाद ने कहा हे भगवान जो मैं मुझे आपसे कोई वर नहीं चाहिए और क्या वर उन्होंने मांगा इसी अध्याय में उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जो नौकर जो सेवक भगवान से अपने स्वामी से कोई भौतिक सुख मांगता है वो जो नौकर है वो शुद्ध भक्त नहीं है कई बार आप देखते हो लोग भक्ति में आते हैं अनेक इच्छाओं को लेकर एक व्यक्ति मुझे मिला था एक ब्रह्मचारी नया भक्त एक मंदिर में कह रहा था मुझे दीक्षा दे दो मैंने कहा क्यों कह रहा फिर मुझे विदेश में कोई मंदिर रख लेगा दीक्षा नहीं होगी तो नहीं रखेगा तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं जो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो सेवक भगवान की सेवा में जुड़ता है पर उसके बदले में कोई उम्मीद रखता है वो क्या है व्यापारी वैसे तो भगवान कहते हैं चार परिस्थिति में लोग मेरी शरण में आते हैं है ना आप ये भी कह सकते हो चात्र में लाभ जाने एक ही से जैसे धन चाहिए रोगी पीड़ित जिज्ञासु और ज्ञान ज्ञानी चार के चार पुण्यात्मा है पर इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है जो ज्ञान के आधार पर मेरे शरण में आता है तो प्रहलाद महाराज हमें इन श्लोकों में उत्तम ज्ञान दे रहे हैं आप कहोगे हम तो निष्काम भाव के योग्य नहीं है तो हमारे लिए कोई स्थान नहीं स्थान है सबके लिए तो प्रहलाद महाराज हमें सबसे उत्तम कोटि का उपदेश दे रहे हैं वो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो नौकर जो सेवक अपने स्वामी से कुछ भौतिक लाभ चाहता है हाँ हम भक्ति करेंगे पर हमें इसके बदले में ये सुविधा चाहिए वो भक्त वो सेवक क्या है मतलबी सेवक है फिर प्रहलाद महाराज स्वामियों की भी चिंता करें चर्चा करें कह कहते हैं जो मास्टर स्वामी सेवक रखता है इस भाव से, ये सेवक के द्वारा मुझे ये सुविधा मिलेगी, ये सुविधा मिलेगी, ये सुविधा मिलेगी, वो स्वामी भी असली मालिक नहीं है। जैसे कि एक समय एक प्रसिद्ध प्रचारक मुझे कह रहे थे, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा शिष्य है, कई प्रसिद्ध धनी लोगों का नाम सुना दिया। तो मैंने उनसे पूछा, आप उन्हें कुछ उपदेश नियमों का पालन इस विषय की चर्चा होती है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो कई धर्म प्रचारक हैं जो कि दीक्षा भी दे देंगे पर कोई नियमों का पालन की चर्चा ही नहीं। क्यों? डर है चर्चा करेंगे तो शिष्य भाग जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं जो सेवक भगवान से कोई उम्मीद रखता है, गुरु से उम्मीद रखता है, वो सेवक जो है मतलबी सेवक, और जो मास्टर जो स्वामी ये उम्मीद करता है कि अगर मैं इसकी इसको लूंगा सेवक के रूप में तो मुझे ये लाभ मिलेगा, ये लाभ मिलेगा, तो वो जो मास्टर स्वामी है वो भी ठीक नहीं है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं वो ही नॉट अ प्योर, वो भी शुद्ध स्वामी नहीं है। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी देवताओं की चर्चा करते हैं, लोग देवताओं के शरणागत होते हैं, और प्रभुपाद जी विकसूरा का उदाहरण देते हैं जिन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया था और फिर प्रसन्न करके वर प्राप्त किया था कि जहां भी वो हाथ रखेंगे वो चीज उसके नीचे फट जाएगी। तो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ना तो सेवक को कुछ उम्मीद करनी चाहिए कि हमें कुछ भौतिक लाभ मिलेगा, ना ही जो स्वामी हैं मास्टर हैं उनको ही उम्मीद करनी चाहिए कि अब ये मेरा शिष्य बन रहा है इसे ये लाभ मिलेगा, ये सुविधा मिलेगी, उन्हें भी ये नहीं। और अगर वो इस प्रकार से सोच रहा है तो वो शुद्ध स्वामी नहीं है। जो शुद्ध स्वामी है उसका कर्तव्य है कि वो शास्त्र पर आधारित यथारूप शिक्षा दे। जैसे आप प्रभुपाद जी के उदाहरण से देखते हो, प्रभुपाद जी ने भारत में गहरा संघर्ष किया। 1922 में प्रभुपाद जी भक्ति से नाथा जी को मिले थे इलाहाबाद में, नेकाकटा में, और हालांकि विदेश में पहुंच कर भी पहले साल के लिए प्रभुपाद जी के पास लगभग कोई सुविधा नहीं थी, जब भी उन्होंने नियम नहीं बदले। उल्टा एक सभी न्यूयॉर्क में एक सभा हुई थी जिसमें अनेक स्वामी थे जो प्रभुपाद जी से कह रहे थे, स्वामी जी आप तो नए आए हो अमेरिका में, हम पुराने हैं, आप जो शिक्षा दे रहे हो कोई नहीं सुनेगा, आप भी बदलिए, हमारे जैसे सूट पहनो, कुछ छुड़े कांटी से खाओ। और प्रभुपाद जी ने कुछ बदला नहीं। तो प्रभुपाद जी ने ये नहीं सोचा, अरे अगर मैं ज्यादा सरल बना दूंगा तो ज्यादा सेवक आएंगे। उन्होंने भगवान के संदेश को यथा रूप रखा। उसी प्रकार आज भी इस्कॉन के भक्तों का प्रचार हो रहा है, और इस्कॉन के भक्त ये नहीं सोचते कि अगर हम थोड़ी और छूट दे देंगे, 16 माला की जगह 8 माला, 4 नियम के बजाय 3 नियम, तो ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ज्यादा आर्थिक लाभ होगा, नहीं वो भावे। ब्राह्मण जी कहते थे वी वांट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मैं आपका निष्काम भाव का सेवक हूं और आप मेरे सनातन स्वामी हो। ये नहीं कि जीवन की समाप्ति के पश्चात आप भगवान के साथ एक बन जाओगे, हाँ हमेशा उनके सेवक रहेंगे। नित्य नित्य नाम चेतना चेतना नाम एक भवनाम विदाति का नाम, हम नित्य हैं भगवान नित्य हैं, तो वो नित्य सबको संभाल रहा है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मैं आपका निष्काम भाव का सेवक हूँ। चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में आप पढ़ते हो, उनके भक्त थे खोलाबेटा श्रीधर। खोलाबेटा श्रीधर भौतिक दृष्टि से बहुत गरीब थे, कोल की उनकी छोटा सा धंधा था, केले बेचते थे और लीफ कप्स को ये डोने बनाते थे पत्तों के, छोटी सी, और वो छोटी सी आमदन का 50% वो खर्चते थे गंगा की सेवा के लिए। दिन रात हरि नाम का जाप करते थे, उल्टा रात को जब वो जोर से करते थे हरे कृष्णा, उनके पड़ोसी चिल्लाते थे, कहते खुद भी नहीं सोता हमें भी सोने नहीं देता, लगता भूत सिता रहे हैं इसको, भूखा व्यक्ति है। और महाप्रभु रोज उसकी दुकान में जाते थे, महाप्रभु ने संस्कृत का पाठशाला खोला था, रास्ते में उनकी दुकान में रुकते थे और रोज उनसे सौदा करते थे। महाप्रभु कहते थे मैं जानता हूं तुम कितने धनी हो, और खुद श्रीधर कहता था आप मेरे घर आकर क्यों नहीं देख लेते मैं कितना धनी हूं। उनके पास रहने के लिए एक छोटा सा कमरा था जिसमें छत भी नहीं थी, और पूरे घर में एक टूटा हुआ बर्तन जिसे कोई चोर भी नहीं छुए, और महाप्रभु ने उस बर्तन से पानी पिया। तो महाप्रभु एक दिन वर दे रहे थे और उन्होंने खुद भैया श्रीधर से पूछा क्या वर चाहिए, जो वर चाहिए मांगो। खुद भैया श्रीधर ने कहा अगर आप मुझे वर देना चाहते हो, महाप्रभु ने कहा ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए, क्या चाहिए, उनके लिए क्या असंभव था। मुझे श्रीधर ने कहा अगर आप वर देना चाहते हो तो ये वर दीजिए कि हर जन्म में मैं आपके साथ रहूं और आप मेरी दुकान में आओ सौदा करने। तो प्रधान महाराज कह रहे हैं मैं आपको निष्काम भाव का सेवक हूं और आप मेरे सनातन स्वामी हो, इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं चाहिए मुझे आपसे, कोई ये नहीं आपकी जैसे ऐश्वर्य चाहिए, आपकी जैसी खूबसूरती चाहिए मुझे, आपकी जैसे प्रभाव नहीं, आप मेरे सनातन स्वामी हो, मैं आपके सनातन सेवक हूं और मुझे और कोई रिश्ता नहीं चाहिए, यही संबंध चाहिए, आप स्वामी और मैं आपका सेवक। आगे प्रहलाद महाराज जी क्या कह रहे हैं, आगे वो कहते हैं हे भगवान अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो हम तो भगवान से मांगते हैं, अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो ये वर दीजिए कि मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा ना हो। क्या वर दीजिए, तो आप ऐसे कितने भक्तों की इच्छा है इस प्रकार का वर प्राप्त करने के लिए, सब ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो शुद्ध भक्तों की सभा है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं आप भगवान से वर मांगो, वो कहते मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं हो। इच्छा तो रखना है आपने, अगर हम कहें आप सब इच्छा रहित हो जाओ तो चलेगा, आप कहोगे कैसे संभव। तो प्रधान महाराज ये नहीं कह रहे इच्छा रहित, वो कह रहे हैं आप मुझे वर दीजिए कि आप कि मेरे हृदय में किसी प्रकार का प्रकार के भौतिक इच्छा ना हो। क्यों, भौतिक इच्छाओं को आप कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, जैसे आज के श्लोक में पढ़ रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज ने जिन्हें शिरोमणि भक्त कहा जाता है इस अध्याय में यह स्थापित किया है कि हमें परम भगवान के शरणागत होना चाहिए, और किस भाव से, सेवा के भाव से, ये नहीं कि हमें इसके बदले में ये मांगे। मांग सकते हो, आखिर ध्रुव महाराज भी जंगल के लिए गए थे एक भौतिक इच्छा को लेकर, है ना। तो ध्रुव महाराज भी भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए, भगवान के रूप का चिंतन करते हुए उन ऐसी पवित्रता प्राप्त की। ध्रुव महाराज ने 34 कर्म में भगवान से प्रार्थना की अगर आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हो, अगर आप मुझे कृपा देना चाहते हो तो ऐसी आशीर्वाद दीजिए कि मुझे हमेशा उन्हें भक्तों की संगत प्राप्त हो, क्योंकि उनकी संगत प्राप्त होगी तो मेरे हृदय में भक्ति भावना बढ़ेगी। तो आप इच्छा मान सकते हो, पर क्या क्या मांगते हैं भक्त? ऐसी ऐसा वर कि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो प्रहलाद महाराज ने यह मानते हैं सबसे ऊंचे कोटि का भाव प्रकट किया है। तो आप कहोगे, सोचोगे मन में, पर हम तो इसके योग्य नहीं है। योग्य नहीं हो बेशक, पर कम से कम आपको आपका लक्ष्य तो समझना चाहिए। ये नहीं कि भगवत का संदेश पर से लिखा जाए, उस भाव को आप अनुकूल कर पाओगे अगर आप उस भाव के विषय में पढ़ोगे और सुनोगे। प्रभुपाद जी बड़े ध्यान से सुनते थे, और भक्ति सिद्धांत जी ने कहा ये लड़का ध्यान से सुनता है और एक दिन उत्साह से प्रचार करेगा। तो अगर हम ध्यान से भगवत का संदेश सुने, चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को भक्ति की अनेक विधियों का वर्णन किया था, वेदांत में उन्होंने पांच महत्वपूर्ण विधियों को कहा कि इनका पालन करो। और पहला क्या था? साधु संग, दूसरा था नाम कीर्तन, तीसरा भागवतम श्रवणम। तो अगर आप ध्यान से भागवतम को रोज सुनोगे तो क्या लाभ होगा? नास्ता प्रवेश बद्रेशु नित्यम भगवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोक है भक्ति भवन। ध्यान से भागवतम सुनोगे तो हृदय की जो मैल है ये दूर होगी। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मेरे हृदय में किसी प्रकार का भौतिक भाव ना हो। आगे क्या कह रहे हैं? आगे प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं, जन्म काल से ही काम इच्छाओं के कारण। तो जन्म काल से ही हम काम इच्छाओं के प्रभाव में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म काल से ही हम अज्ञानता में रहते हैं। वहां जन्म होता है अज्ञानता के प्रभाव में, हम पलते हैं अज्ञानता के वातावरण में और मरते हैं अज्ञानता के वातावरण में। पर अगर कोई भाग्यशाली व्यक्ति हो तो वो श्वेत भक्तों की संगत में आ जाता है। जैसे हम एक प्रार्थना का उच्चारण करते हैं, ओम ज्ञान तिमिरं दर्श्य ज्ञानांजना शलक्य चक्षुर्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः, कि हमारा जन्म हुआ था अज्ञानता में। तो ये अज्ञानता दूर होती है कैसे? साधु संघ के प्रभाव से। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं जन्म काल से ही काम इच्छाओं के कारण मनुष्य की इंद्रियों के कार्य, हमारे जो इंद्रियों के कार्य हैं, जब हम काम इच्छाओं के प्रभाव में आते हैं तो हमारी बुद्धि बदल जाती है। अर्जुन ने भगवान से पूछा क्या कारण है कि जानते हुए भी हम गलत काम कर रहे हैं, हम गलत काम करते हैं। अब जानते हो ये कार्य गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, जब भी हम करते हैं। तो भगवान ने क्या कहा? काम ऐसा क्रोध ऐसा राजगुण सुमत बाबा, मैंने कहा काम इच्छाओं के कारण। आगे भगवान ने कहा कि काम इच्छाएं निवास कहाँ कर दिए हैं? कहाँ निवास कर दिए हैं? मन बुद्धि और इंद्रियों में। और फिर आगे भगवान कहते हैं ज्ञान की तलवार से इनको उखाड़ो। दूसरे शब्दों में इस श्लोक में भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस विषय की व्याख्या करते हैं। प्रभुपाद जी ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की, जो ये इस अध्याय के जो श्लोक हैं, खास करके इस 10वें अध्याय के पहले 10 श्लोक इतने महत्वपूर्ण हैं कि हर भक्त से निवेदन है कि वो ध्यान से पढ़ें, पढ़ें फिर से पढ़ें, फिर से पढ़ें, क्योंकि एक बार सुनने से आप भूल जाओगे। तो बचपन से ही जन्म काल से काम इच्छाओं के कारण मनुष्य की इंद्रिया के कार्य, उदाहरण के लिए हमारी इंद्रियां, जब हम काम इच्छाओं के प्रभाव में होते हैं तो इंद्रियों का उपयोग किस लिए किया जाता है, किस लिए? इंद्रिय तृप्ति के कार्य के लिए। पर शास्त्रों का क्या निर्णय है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर वेदना निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेश सेवना भक्ति निर्मुचते। ऋषिकेश किसका नाम है? और ऋषिकेश का अर्थ क्या है? इंद्रियों के स्वामी। तो इंद्रियों का सदुपयोग वो है जब आप इंद्रियों का उपयोग करते हो भगवान की सेवा में, नेत्र का उपयोग करते हो भगवान के सुंदर विग्रह को देखने के लिए, कान का उपयोग करते हो भगवान का गुणगान सुनने के लिए, जीभ का उपयोग करते हो भगवान का गुणगान करने के लिए, पैरों का उपयोग करते हो भगवान के धाम में चलकर या मोटर में जाने के लिए। पर जब आप काम इच्छाओं के प्रभाव में हो तो नेत्र का उपयोग करोगे पोर्नोग्राफी देखने के लिए, पैरों का उपयोग करोगे क्लबों में जाने के लिए, हाथों का उपयोग करोगे गलत काम के लिए। पर जब ज्ञान हो तो हम ठीक करते हैं। फिर मन, मन द्वारा भगवान का विषय का चिंतन कर सकते हो। मन मन बाबा मन भक्त हो मन राजी मन, ये भगवान का उपदेश। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने अनेक विधियों का वर्णन किया है, परंतु में वो कहते हैं इन सब विधियों का मूल निर्णय यह है तुम सदा कृष्ण का स्मरण करो और कभी कृष्ण को भूल मत। तो सदा कृष्ण का स्मरण करो। कृष्ण का स्मरण कैसे करोगे? उनकी लीला स्वरूप इत्यादि उनके आदेश का स्मरण करके। तो मन द्वारा भगवान का चिंतन करो। पर अगर आप काम इच्छा के प्रभाव में हो तो मन में सदा इंद्रिय तृप्ति का भाव रहेगा। किसी को देखोगे सड़क में, हाँ उसे मेरा रिश्ता होना चाहिए, उसे ये होना चाहिए, है ना? तो मन का दुरुपयोग हम करते हैं, फिर शरीर बुद्धि इत्यादि। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि हम सब काम इच्छा के प्रभाव में हैं, पर अगर हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति चाहिए हमें क्या करना चाहिए? शुद्ध भक्ति के मार्ग में जुड़ना चाहिए। ये नहीं कि आप इच्छाओं से रहित हो सकते हो। तो जब तक हम भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो गए आप भगवान के धाम नहीं लौट सकोगे। इन श्लोकों में यह भी साबित किया जा रहा है कि इंद्रियों को भौतिक कार्यों के द्वारा आप कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। अज्ञानता में हम सोचते हैं कि हम इंद्रियों को संतुष्ट कर लेंगे, थोड़ी इंद्रिय तृप्ति की सुविधा प्राप्त हो हम संतुष्ट कर लेंगे। पर हमारे शास्त्र में क्या कहा गया है? शास्त्र में कहा गया है चाहे आपको कितनी भी इंद्रिय तृप्ति की सुविधा हो आप भौतिक कार्यों के द्वारा उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकते। वो उदाहरण दिया जाता है जैसे अग्नि, अग्नि जल रही है, आप ऊपर से मक्खन घी डाल रहे हो, अग्नि बुझेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो उसी प्रकार संतों का कहना है इंद्रिय तृप्ति के कार्य इंद्रियों को भौतिक कार्यों के द्वारा आप कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। भागवत में आप उदाहरण पढ़ते हो, कथा पढ़ते हो महाजयाति की, 10,000 सालों के लिए उन्हें पूरी सुविधा प्राप्त थी, परंतु उन्होंने कहा मैं तो एक लष्टी बकरे के समान हूं जो प्रयास कर रहा था इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए पर संतुष्ट नहीं कर पाया। आप भागवत में एक योगी की कथा पढ़ते हो जिनका नाम था सुबारी मुनि। सुबारी मुनि जैसे सब मेरी जहाज पानी के नीचे चलता है, पानी के नीचे बैठकर भगवान का चिंतन कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि दो मछलियां भोग विलास कर रही हैं, तो वो सोचने लगे आह इस कार्य में कितना आनंद है। तो उन्होंने अपनी चिंतन छोड़कर जल के बाहर आए और राजा के पास गए जिसकी 50 बेटियां थी। राजा से कहा कि आपकी किसी भी एक बेटी से मैं विवाह करना चाहता हूं। राजा ने देखा बदसूरत, लंबे नाखून, लंबे बाल, जंगली जैसा पुरुष। राजा ने कहा मैं तो जबरदस्ती विवाह नहीं करा सकता, तो अगर वही बेटी खुद मान जाए तो अलग बात है। तो बेटियों ने देखा संगा से रिजेक्ट कर दिया। तो सिपाही मुनि समझ गए कि क्योंकि बदसूरत हैं, लंबे नाखून हैं, लंबे बाल हैं, जंगली जैसे दिखते हैं, सबने इनकार कर दिया। तब योगिक सिद्धि के द्वारा एक खूबसूरत युवक का रूप उन्होंने धारण कर लिया, योगिक सिद्धियां थी उनके पास, और एक महल भी पैदा कर दिया। और फिर जब बहनों ने देखा इस खूबसूरत पुरुष को, बहनों में झगड़ा हो गया। सारी बहनें कहने लगी, किसने कहा मैंने इसे पहले देखा ये मेरा पति बनेगा, दूसरे देखा मेरे मैंने पहले देखा ये मेरा पति बनेगा। तो अंत में स्वामी मुनि ने 50 से विवाह कर लिया और एक पति से 100 बेटे पैदा किए। योगी थी, उच्च कोटि का योगी था। तो फिर उसने देखा कि मैं कितना मूर्ख हूं, मैं कितने आसानी से फिसल गया, और अब हालांकि ये सब सुविधाएं हैं जब भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। फिर उन्होंने घर छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया और पत्नियों ने भी पति के आदेश के अनुसार घर छोड़कर बड़ी गहरी तपस्या की जंगल में। तो शास्त्रों में कहा गया है चाहे आप कितना भी प्रयास करो आदमियों को भौतिक कार्यों के द्वारा संतुष्ट नहीं कर सकते। भगवत में एक और सरल उदाहरण दिया जाता है जिससे आप परिचित हो गए। आपको कभी कभी चमड़े की बीमारी हो जाती है, खुजली होती है, तो आप खुजली करते हो शुरू में थोड़ा संतुष्ट मिलती है, फिर वो बीमारी बढ़ जाती है ना। तो डॉक्टर लोग क्या करें, वहां हाथ मत लगाना, है ना। तो वही स्थिति है। इंद्रिया तृप्ति एक ऐसा कार्य है काम इच्छाओं के कारण प्रभाव में आकर जितना करोगे उतना ही निराश रहोगे। तो इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं बड़े स्पष्ट रूप से कि हमें भक्ति के कार्य में जुड़ना चाहिए और निष्काम भाव से। और प्रभुपाद जी रूपक गोस्वामी जी का वर्णन करते हैं, रूपक गोस्वामी जी ने हमें अनेक ग्रंथ दिए। कल आपने भक्ति सिद्धांत जी का 13वां तिथि मनाई, भक्ति सिद्धांत जी ने रूपक गोस्वामी जी की शुद्ध शिक्षा की स्थापना की। उनके पिता भक्तिनाथ ठाकुर ने जब देखी समाज की स्थिति, जैसे अद्वैताचार्य ने हरिदास ठाकुर के साथ प्रार्थना की थी कि भगवान प्रकट हो, हालांकि अद्वैताचार्य भगवान के अवतार थे, खुद पर जब भी वो चाहते थे कि भगवान स्वयं प्रकट हो, और फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो इसी प्रकार हरि ठाकुर भक्ति विनोद जो नित्य सिद्ध भक्त हैं, उन्होंने शुद्ध चैतन्य महाप्रभु जी की शुद्ध शिक्षा की स्थापना की। रूपक गोस्वामी के सिद्धांत के आधार पर भक्ति की स्थापना की, और उन्होंने भी इच्छा प्रकट की थी कि अगर विष्णु का प्रतिनिधि कोई प्रकट हो, विष्णु की किरण, तो ये आंदोलन आगे बढ़ सकेगा। तो भक्ति सिद्धांत जी प्रकट हुए थे पृथ्वी पर क्योंकि नित्य सिद्ध भक्त थे महा भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा के अनुसार, और उन्होंने रूपक गोस्वामी जी के शुद्ध सिद्धांत की स्थापना की। और प्रभुपाद जी ने भी इसे आगे बढ़ाया प्रभुपाद जी ने रूपक गोस्वामी जी के अनेक ग्रंथों का अनुवाद किया, खास करके उपदेशन में तो और भक्ति रस में तो सिंधु। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं नया विलासिता सुनियम इसमें नया विलासिता सुनियम। तो नया विलासिता मतलब कि भौतिक इच्छाएं, शून्य मतलब कि मुक्त हो जाना। तो आप कहोगे स्वामी जी हम तो भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहते हैं, हम जानते हैं कि कभी संतोष नहीं होंगे, पर कैसे, क्या है उपाय? उपाय है भक्ति योग। जब आप मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करते हो भगवान की सेवा में, ये इंद्रियां जो अपूर्ण है अशुद्ध है शुद्ध बन जाती है। तो भक्ति योग एक माध्यम है, ये भक्ति योग है निर्णय भगवद गीता का, भक्ति योग है निर्णय श्रीमद भगवतम का। और आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बड़े स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर आप अपनी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो तो भौतिक इच्छाओं को हमें त्यागना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि भौतिक इच्छाएं भी चाहिए और आध्यात्मिक, कई बार हम सोचते हैं हमें तो दोनों चाहिए। इंग्लिश में कहावत है यू हैव योर केक एंड ईट इट टू। बड़ा अच्छा केक है, दिखने में बड़ा अच्छा है, दिल कहता खाओ पर आप उसको काटना भी नहीं चाहते। तो अगर आपको भौतिक आध्यात्मिक परिवर्तन करना है तो कुछ तो त्यागना पड़ेगा। जब उस ब्राह्मण ने संत गोस्वामी सनातन गोस्वामी से कहा, पूछा आपके पास इस पर्वत पत्थर से ज्यादा कीमती कोई चीज है? तो सनातन गोस्वामी ने क्या कहा, हाँ है, पर पहले क्या करो, पर्वत पत्थर को फेंको। तो कई बार हम क्या सोचते हैं, पर्वत पत्थर भी रखेंगे और हरिनाम भी रखेंगे। पर्वत पत्थर रखो भगवान का मंदिर बनाने के लिए अपने लिए। तो यहां कहा जा रहा है कि हमें भौतिक इच्छाओं से रहित होना चाहिए, और ये संभव है अगर हम भगवान की सेवा में जुड़े। तो हमारी इंद्रियां, देह, धर्म, सहनशीलता, बुद्धि, इन सब का उपयोग होना चाहिए किस लिए, भगवान की सेवा में। और जब अगर हमारे मन में हृदय में अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाएं होंगी फिर आप भक्ति करना कठिन हो जाएगा। देवी ईश्वर गुना माए मामा माया गलत आया, मेरी माया का विरोध करना बड़ा कठिन है। पर अगर तुम मेरे शरण में आते हो, मामे वामे प्रबदे माया में ताम, मेरी शरण में आते हो इसका विरोध कर सकोगे। तो अगर हम भक्तों की संग में रहें, अगर हम हरि नाम का जाप ध्यान पूर्वक करें, अगर हम बकायदा श्रीमद् भागवतम को पढ़ें, तो आप बड़ी सरलता से माया का विरोध कर सकते हो। पर अगर हम भक्तों की संग में ना रहें, ध्यान से जाप नहीं करें, पूरा जाप नहीं करें, भागवतम नहीं सुने, वैष्णव अपराध करें, तो क्या परिणाम होगा? आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हमारा सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी की कृपा से, हमारे आचार्यों की कृपा से हमें शुद्ध संदेश प्राप्त है, हमें इसका केवल लाभ उठाना चाहिए। तो आज के तात्पर्य में बड़े स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमें भक्ति योग के जुड़े रहना चाहिए, बहुत ही कलमश से मुक्त होना चाहिए। बहुत एक इच्छाओं को रखोगे एक भारी बोझे के समान है। तो आप ये कह सकते हो हम इनसे मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करें? जैसे अर्जुन ने कहा मजबूरन हम काम के प्रभाव में आ जाते हैं। भगवान ने गीता में ये भी कहा लस्ट एंगर एंड ग्रीड आर थ्री हाईवेज लीडिंग टू नरक। में कोई जाना चाहता है? जैसे आप देखते हो डायरेक्शन दिल्ली वृंदावन आगरा, तो भगवत गीता डायरेक्शन देती है नरक में जाने के लिए क्या कमजोरियों की आवश्यकता है। इनमें एक है काम की इच्छा। तो हमें इनसे बचना है। और प्रभुपाद जी आगे जाकर सर्व रूप गोस्वामी जी के श्लोक का वर्णन है, सर्व उपाधि विरहित मुक्त। अगर हम सब उपाधियों से मुक्त होना चाहते हो तो हमें सारी इंद्रियों का उपयोग करना है ऋषिकेश की सेवा में, और ये संभव है। आज आप देख सकते हो आज के वातावरण में लाखों भक्त है सारे विश्व में, जो कि बचपन में जुड़े थे अनेक प्रकार के पाप के कार्यों में, तो भक्ति के विनय के पालन के द्वारा इनसे मुक्त हो गए। तो ध्यान से भगवतम सुनोगे तो अशुद्ध हृदय शुद्ध बनेगा। और अंत में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, जब जीवात्मा परम भगवान की सेवा में जुड़ते हैं जुड़ती है तो इसके दो लाभ है। एक है आप भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाते हो। भौतिक उपाधि का अर्थ है आप ये सोच रहे हो मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं मुझे ये सुविधा प्राप्त होनी चाहिए इंद्रिय तृप्ति में जुड़ना चाहिए, आप इस भाव से मुक्त उपाधि से मुक्त हो जाते हो। और दूसरा जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये शुद्ध बन जाती है। इस समय हमारी इंद्रियां क्या है, अशुद्ध है अपवित्र है। हमारे पास मन में अनेक उपाधियां हैं हम ये हैं, तो जब आप भक्ति में जुड़ते हो ये शुद्ध हो जाती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें शिक्षा सका में क्या उपदेश दिया है। वैसे तो महाप्रभु ने अपने शिष्यों को कहा था भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए, तो स्वयं केवल हमें 8 श्लोक दे गए जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं। वे तो पहले श्लोक में क्या कहते हैं महाप्रभु, चेत दर्पण भव मग्नाग्नि नरापनाम। सबसे पहले चेत दर्पण, तो हरि नाम का लाभ पहला लाभ क्या है, हृदय की मैल दूर होती है। तो यही भाव प्रभुपाद जी प्रकट कर रहे हैं तात्पर्य की समाप्ति में कि अगर आप भक्ति का पालन करोगे तो भौतिक उपाधियों से बचोगे। भौतिक उपाधि का क्या अर्थ, हम सोचते हैं हम पुरुष हैं स्त्री हैं हमें इतनी तृप्ति मिलनी चाहिए ये सुविधा, और सुबह से रात तक हम भागते रहते हैं किस लिए, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। पर अंत में क्या परिणाम होता है, चाहे आप कितना भी प्रयास करो आप इंद्रियों को भौतिक कार्यों के द्वारा संतुष्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। एक प्रचारक थे जो कहते थे भौतिक इंद्रिय तृप्ति में जुड़ो फिर अंत में तुम संतुष्ट हो जाओगे, ये संभव नहीं, यह शास्त्र में निर्णय है। हम सुनते हैं जय पीओ के तो जीवन समाप्त हो जाएगा, तो आप ये कभी कहते हो मुझे जहर पीने दो फिर देखते हैं मरते हैं कि नहीं। हम शुरू से ही सावधान रहते हैं, आपको पता है तेज चलती है मोटर के सामने आप खड़े हो जाओगे तो खत्म हो जाओगे, तो आप क्या एक्सपेरिमेंट करते हो नहीं। तो उसी प्रकार हमारे संतों ने स्वयं भगवान ने अनेक श्लोकों के द्वारा हमें उपदेश दिया है, तो उसमें अनुभव करने की बजाय हमें उनकी शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए। और मनुष्य जीवन बड़ा कीमती है तो लाभ उठाने का अर्थ है भक्ति योग में जुड़ना चाहिए, और साधु संगत में भक्ति योग का पालन बड़ा सरल हो जाता है। इसलिए शास्त्र का निर्णय क्या है, साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र का लाभ माता साधु संग शास्त्र का निर्णय है कि भक्तों की संग में रहो। तो प्रहलाद महाराज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं, हमें इसका लाभ उठाना चाहिए अगर हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि हमें एक शिक्षा प्राप्त हुई है, पर हमने दूसरों का भी सोचना है कि नहीं, दूसरों को भी भाग्यशाली बनाना है कि नहीं, तो कैसे बनाओगे प्रचार करके। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं सब भक्त में सबसे प्रिय कौन है, मैं प्रचार करता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत जी जिनके तेरहवां तिथि आपने कल मनाई थी, क्योंकि सिद्धांता जी ने क्या कहा, प्रचार करो। उन्होंने तीन बड़े बड़े प्रिंटिंग प्रेस खोले थे, अपने शिष्यों को भेजते थे पत्रों को, ग्रंथों का, मैगजीन का वितरण करने के लिए। एक समय भक्ति सिद्धांता जी ने एक डेली न्यूज पेपर शुरू किया जिसका नाम था नादिया प्रकाश। तो एक धनी व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी आप डेली न्यूज पेपर खोल शुरू कर रहे हो, तुम्हें क्या छापोगे? तो भक्ति सिद्धांता जी ने कहा कि अगर एक साधारण शहर में तुम 5 न्यूज पेपर छाप सकते हो तो भगवान की अनंत लीलाओं के विषय में हम क्यों नहीं छाप सकते। तो भक्ति सिद्धांत जी ने कई चीजों की स्थापना की, सारे विश्व में प्रचार किया। प्रभुपाद जी को आदेश दिया, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को। पहली मुलाकात में ही भक्ति सिद्धांत जी ने देख पाए, ये है वो युवक जो कि महाप्रभु के संदेश को सफल बना पाएगा। उन्होंने ये आदेश दिया और उन्होंने अनेक ग्रंथों की भी रचना की। तो हम दूसरों को भी जोड़ते हैं भक्ति में। वो कैसे जोड़ते हैं? प्रचार के माध्यम से। ये जो गीता वितरण का मैराथन जो कि हम सारे विश्व में हर साल करते हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है? पतितों का उद्धार करना। और क्योंकि भक्तों के मन में ये भावना है, हमारा तो उद्धार हो गया पर हमें दूसरों को भी सुखी बनाना है। और इसलिए भगवान ने प्रचार की सेवा को इतना महत्व दिया है। भगवान 18वें अध्याय में क्या कहते हैं, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? हाँ, जो मेरा और उससे ज्यादा प्रिय तो हुआ है ना। तो हम सब किसी न किसी व्यक्ति के, प्रसिद्ध व्यक्ति के प्रिय बनना चाहते हैं ना। जैसे आजकल मोदी जी का प्रभाव है, सभी उनके निकट पहुंचना चाहते हैं। सभी कहते हैं हम उनके खास मित्र हैं। तो यहां भगवान कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मैं प्रचार करता हूं। मोदी के निकट तो 4-5 प्रिय व्यक्ति हो सकते हैं, तो भगवान के प्रिय अरबों व्यक्ति हो सकते हैं। तो हम सब अगर प्रचार करेंगे तो भगवान के प्रिय बन सकते हो। तो ये जो प्रचार की सेवा है उसमें सब हम सबको बड़े उत्साह से जुड़ना चाहिए। आप में से कितने भक्त ग्रंथ के वितरण के मैराथन में जुड़े हुए हो? थैंक यू। और मुझे पूरा, क्योंकि आज वर्किंग डे है तो कई भक्त नहीं आए होंगे। आप लोग की क्या 2 लाख की योजना है? कल रात को मैं फरीदाबाद में था तो वहां के भक्तों ने, क्या फरीदाबाद के भक्तों में उत्साह है? तो आप भक्तों में ज्यादा उत्साह है। उन्होंने 1 लाख गीता की योजना बनाई है। तो प्रयास करना हमारा फर्ज है, बाकी भगवान के हाथ में। तो आप सब प्रयास कीजिए, लोग गीता पढ़ेंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे। कई बार हमारे मन में वहम होता है कोई नहीं पढ़ेगा, है ना। कई बार आप कई लोगों को प्रचार करते हो जो कहते हैं हमारे पास, हमारे घर में तो पिछले साल की भी गीता पढ़ी है। तो उन्हें कहो कि गीता आगे बांटो किसी को। और आखिर हम ये प्रचार क्यों कर रहे हैं? ये भगवान ने कहा है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन सब भक्तों को बुलाकर कहा, नित्यानंद हरिदास साहब आओ आओ और जाओ घर घर प्रचार करने। क्या ये प्रचार करने? कृष्ण ही तुम्हारा प्राण है, कृष्ण ही तुम्हारा असली धन है, कृष्ण ही तुम्हारा जीवन है। तुम्हारा जीवन समर्पण होना चाहिए कृष्ण की सेवा में, और कृष्ण की सेवा के अलावा और कोई किसी विषय में नहीं। बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण, करो कृष्ण से क्या, सबसे निवेदन करो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का उपासना करो, कृष्ण की ही सेवा करो। तो इस संस्था में प्रचार का उत्साह है। खुशी की बात है, कि जैसे आप लोग दिल्ली में प्रयास कर रहे हो, सारे विश्व में भक्त प्रयास कर रहे हैं ग्रंथों का मैराथन करने के लिए। साइबेरिया नाम सुना है आपने? वहां इस समय -50 टेम्परेचर है और साइबेरिया और मॉस्को में भी काफी ठंड है, अमेरिका में भी ये साल बहुत ठंड है, पर इस वातावरण में भी हमारे भक्त प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाहते हैं दुखी व्यक्ति सुखी बन जाए। प्रभुपाद जी ने कहा कि कोई एक श्लोक भी पढ़ेगा तो अपने जीवन को सुधार सकेगा। तो आप सबसे एक तरफ से मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप सब इस प्रचार की सेवा में जुड़े हो, और दूसरी तरफ से हम सबको उत्साहित होना चाहिए सेवा में जुड़ने के लिए, क्योंकि ये सेवा हम कर रहे हैं किस लिए? अंत में भगवान की खुशी के लिए। हम कहते हैं प्रभुपाद के ग्रंथ, पर असल में ग्रंथ है भगवान के, श्री भगवान वाचा, और पूरे ग्रंथ में यही उपदेश दिया जा रहा है कि भगवान के शरणागत हो जाओ। आप सब भक्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रहलाद में आज जो संदेश दे रहे हैं संक्षेप में क्या है कि हमें सदा भगवान का सेवक रहना चाहिए, और हम भगवान की सेवा के माध्यम में कुछ भौतिक उम्मीद नहीं करते। प्रहलाद महाराज कह चुके हैं कि अगर हम सेवा कर रहे हैं और साथ में हम उम्मीद कर रहे हैं ये सुख ये लाभ, तो हम निष्काम भाव के सेवक नहीं, हम व्यापारी हैं। क्या भगवान इतने दयालु हैं, उनके साथ व्यापारी का धंधा रिश्ता कोई रिश्ते से तो ज्यादा बेहतर है। पर क्योंकि प्रहलाद महाराज शिरोमणि भक्त हैं, वो हमें सबसे उत्तम कोटि की शिक्षा दे रहे हैं। और जैसे कि भौतिक समाज में अगर आपने कुछ खरीदना हो तो आप सबसे अच्छी चीज खरीदना चाहते हो ना, तो भगवतम के द्वारा हमें शुद्ध भक्ति का उपदेश मिल रहा है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं हमें भगवान से व्यापार नहीं करना चाहिए, और जो सेवक बिना किसी इच्छा के स्वार्थ के सेवा करें वो असली सेवक। जो स्वामी है मास्टर है उसे भी ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए अब ये मेरा सेवक बन रहा है मुझे ये लाभ मिलेगा। उसे भी इस प्रकार का भाव नहीं रखना चाहिए। और प्रहलाद महाराज फिर प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे भगवान अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मेरे हृदय में किसी प्रकार का भौतिक इच्छा नहीं हो, और अगर आप भक्ति की विधियों का पालन करोगे तो उस स्थिति पर पहुंच सकते हो। करोगे भक्ति की विधियों का पालन सब उत्साह के साथ? रूपक गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य, तो हमें उत्साहित होना चाहिए। हरे कृष्णा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने सारा विवरण किया। महाराज हम जब भी कोई सेवा करते हैं तो सेवा करने से पहले अपने सुख के बारे में ध्यान जाता है कि मेरे लिए क्या सुविधाएं हैं, मेरे लिए कितना कन्वीनियंट है, तो कैसे
अगर आप सदा अपनी सुविधा का सोचोगे तो भक्ति में इतना आगे बढ़ नहीं पाओगे। जब तक हम निष्काम भाव के गुणों को भाव को प्रकट नहीं करें आप उधर के उधर ही रहोगे। कहीं एक समय किसी शिष्य ने भक्ति सिद्धांत जी से पूछा कि क्या कारण है कई व्यक्तियों को हम देखते हैं भक्ति में जुड़ते हैं ठीक ही के साथ आगे बढ़ते हैं कई स्लो। तो भक्ति सिद्धांत जी ने कहा एक जो आपकी कथा सुन बैठे हो तो मैं तो रिपीट कर रहा हूं कि एक बारात जा रही थी सो गए सुबह देखा कि वहां की वहां की है ना, फिर जब खोजा तो उन्होंने क्या देखा बोट में ने मेहनत तो की है पर लंगर निकालना भूल गया, तो बोट आगे बढ़ी नहीं। तो इसी प्रकार हमारा लंगर जब तक लगे रहेगा मुझे ये चाहिए कई भाग मुझे ये सेवा ये तो आप जहां हो वहीं रहोगे। अगर भगवत प्रेम चाहते हो आप भौतिक आकर्षण तोड़ना चाहते हो तो आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। जितना त्यागोगे उतनी ज्यादा कृपा प्राप्त होगी, जितना रखोगे उतना भारी बोझ रहेगा.
यस
हाँ जल्दी हाँ
हरे कृष्ण. महाराज जैसे हम भौतिक इच्छाएं बनाए रखते हैं, आपने जैसे प्रभुपाद परपट भी बता रहे हैं कि हमारे बचपन से ही भौतिक इच्छाएं प्रगढ़ हैं, बहुत डीपली रूटेड हैं, तो जब हम भक्ति में जुड़ते हैं, भक्ति करते रहते हैं, वो इच्छाएं बनाए रखते हैं, बनी रहती हैं वो इच्छाएं, और समटाइम्स वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो एक अंदर फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है, उससे समटाइम्स भक्त विचलित हो जाता है, भक्ति से विचलित हो जाता है. तो कैसे उसमें हम दृढ़ रहे हैं और आगे बढ़े हैं सर से?
हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि भक्ति में आने से हम क्वेश्चन पर से बोलिए.
मतलब भक्ति करते हुए जैसे हम जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, हमें संतान चाहिए, धन चाहिए, वो इच्छाएं हमारे साथ चलती रहती हैं. कुछ इच्छाएं पूर्व जन्म की भी हैं, कुछ इच्छाएं अब की भी हैं, वो इच्छाएं हमारी भक्ति के साथ चलती रहती हैं. वो इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो वो हम भक्ति से विचलित हो जाते हैं समटाइम्स, और भक्ति छोड़ बैठते हैं. तो कैसे उसमें हम दृढ़ रहे हैं?
चाहे कुछ भी स्थिति हो, देखिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भौतिक संसार में आप अपनी सब इच्छाओं को पूरा कर सकोगे. सब इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकोगे. कभी कभी हम सोचते हैं अब हम दीक्षित हो गए, अब तो सब इच्छाओं को पूरा हो जाना चाहिए, बिजनेस में नफा बढ़ जाना चाहिए. पर भौतिक संसार में हम सब हमारे कर्मों के पूर्व जन्म के संस्कार और कर्मों के प्रभाव में है. तो जितना आपका कोटा है उतना ही आपको मिलेगा, एक बूंद नहीं ज्यादा. प्रहलाद महाराज ने कहा है कि चाहे तुम कितने भी प्रयास कर लो उतना ही सुख मिलेगा जितना आपके कोटे में है, और एक बूंद ज्यादा नहीं. तो अगर आप ये समझ लो, मान लो आपकी कोई इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, आप सोचते हो मुझे ज्यादा कमाना चाहिए, या हमें यही सोचना चाहिए भगवान के हमारे संस्कारों के अनुसार ये हमारा कोटा है जो हमें प्राप्त हो रहा है. इसलिए भक्त के लिए कहा गया है तुष्या देशो जनार्दना. भक्त को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, हार में, जीत में, सुख में, दुख में, सर्दी में, गर्मी में. अक्सर अगर हमारी भौतिक इच्छाओं को हम पूरा कर लें फिर हम संतुष्ट होते हैं, पर हमें हर स्थिति में संतुष्ट होना चाहिए. जब आप हर स्थिति में संतुष्ट हो गए तो फिर विचलित होने की संभावना नहीं रहेगी. पर क्योंकि हमारी कंडीशनिंग है कि हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो जब इसे हम प्राप्त नहीं करते तो हम विचलित हो जाते हैं. यस
क्वेश्चन कि मास्टर सन रिलेशनशिप, सो इफ द मास्टर हैज गॉट सम अल्टीरियर मोटिव ऑफ द मास्टर थिंग्स की what he should be gaining out of the servant, so is it not Maharaj in the first place? That's why the master keeps the servant for.
I'm sorry, I didn't understand. Can you repeat?
Maharaj, the master, as this verse says that even if the master is looking out from some sort of benefits from the servant, so he's not a real master. Is it not the reason for the master in the first place keeps the servant for some benefits?
No, benefit means master keeps the servant to do some seva. But master should not keep a servant with the intention, oh, he's going to give me so much dakshina and I'm going to fly first class. He's going to buy me a nice fancy car. He's going to give me this. That should not be the motive.
Master is not a guru.
Of course, the guru, but the master also, Prabhupada talks about the demigods. Prabhupada says that Krishna would never give a benediction. Wherever you keep your hand, that thing will burst. or Shiva gave it. The problem is the purpose connects it to the demigods.
Thank you much.
You tell Krishna, I'll worship you, or give me the benediction where I keep my hand in the purse. Of course, that benediction that Lord Shiva gave ultimately showed how great Krishna is. Because when Rikasura went into the Lord, he got cheated.
Thank you, Guruji.
Yes, any more questions? क्योंकि रुचि नहीं रहती पढ़ने में तो क्या करोगे कई बच्चों की आजकल रुचि नहीं है मुझे एक बहुत बड़ा अध्यापक कह रहा था कुछ हफ्ते पहले कि भारत में जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स हैं केवल 6% को नौकरी मिलती है 94% सड़कों में घूम रहे हैं तो कई बच्चे देखते हैं कितनी PhD वो टैक्सी चला रहे हैं तो इतनी रुचि वो प्रकट नहीं करते हैं क्योंकि कईयों की बहुत एक शिक्षा में रुचि नहीं रहती बाकी सिद्धांत जी बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे अपने समय के पर उन्होंने कहा कि मैं भौतिक किताबों में नहीं पढ़ना चाहता अगर भौतिकता नहीं मिलेगी तो सब प्रेशर डालेंगे शादी करो तो उन्होंने कहा कि हमने केवल सिद्धांत पढ़ना है ओके एनी अदर क्वेश्चन हाँ माइंड मैंने कहा कि सुख और दुख आप भुगत रहे हो
तो मेरा प्रश्न ये है कि जो हम भक्ति में जो एडवांसमेंट होता है हमारा जो भक्ति करते हैं वो डेफिनेटली सुकृतियों पे डिपेंड करता है लेकिन क्या उसका कोटा भी निश्चित है
उसका कोटा निर्भर है आपके प्रयास के ऊपर अब यही नहीं कह सकते मेरी किस्मत में तो भक्ति है ही नहीं तो मैं माया में करता हूँ भक्ति के लिए भगवान सबको निमंत्रण दे रहे हैं सर्वधर्मां परित्यजामि शरणं व्रज भगवान चाहते हैं हम सब भक्ति में जुड़े बाकी जो भौतिक सुख दुख है वो है निर्बल आपके कर्मों के संस्कार के पर भक्ति निर्बल है आपके प्रयास के ऊपर ओके 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 लास्ट क्वेश्चन
धन्यवाद महाराज महाराज जैसे आपने अभी प्रश्न के उत्तर में बताया कि भक्त जो है भक्त को संतुष्ट रहना चाहिए यदि उसके पास भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हो रही है या नहीं भी हो रही वो हर स्थिति में संतुष्ट रहता तो वो किस बेस पे मतलब किस आधार पे भक्त संतुष्ट रह पाता
क्योंकि भक्त जानता है कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं मैं सिर्फ प्रयास कर सकता हूँ और भौतिक संसार में सुख दुख दोनों अनुभव करना ही पड़ेगा हमें आपको हम भक्त बन गए हैं हमें बीमारी नहीं चाहिए बढ़ावापन नहीं चाहिए मानसिक कष्ट नहीं चाहिए शारीरिक कष्ट नहीं चाहिए यह संभव है चाहे आप भक्त हो या अभक्त हो ये सात प्रकार के कष्ट सबको सहना पड़ेगा केवल अंतर यह है भक्त जानता है कि अगर ये कष्ट मैं भुगत रहा हूँ उसका कारण क्या है और उपाय क्या है जैसे कि बिल्ली के मुंह में चूहा भी बैठता है चूहा भी और उसका बच्चा किटन भी जब चूहा बिल्ली के मुंह में होता है तो कहते हैं अब मेरी मृत्यु आ रही है और किटन बिल्ली का बच्चा जब उसकी माँ के मुंह में होता है उसे सुरक्षा अनुभव होती है तो भक्त को भी मृत्यु का सामना करना पड़ता है बुढ़ापेपन का सामना करना पड़ता है तो भक्त इसका कारण जानता है और जानता है जीवन की समाप्ति पर हम भगवान के धाम जाएंगे सेवा करने के लिए हरे कृष्णा तो ये सब मैराथन कर रहे हो ना हरे कृष्णा जिन जीवनों का उद्धार कर दो